الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الكريم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة کی 38 نمبر آیت سے آج ہم نے شروع کرنا ہے. پیچھے سے تھوڑا سا ملا لیتے ہیں تاکہ بات تازہ ہو جائے ذہن میں. حضرت آدم کے حوالے سے یہ بات بتائی جا رہی تھی کہ انہیں اور ان کی زوجہ محترمہ اما حوا کو حکم ہوا کہ وہ ایک باغ میں جا کر رہیں اور وہاں سے جو چاہیں کھائیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن ایک پیڑ سے روک دیا گیا کہ اس پیڑ کے پاس نہیں جانا. اگر ایسا کریں گے تو وہ اپنے اوپر ظلم ڈھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. لیکن شیطان نے آ کر ان دونوں کو بہلا پھسلا کر جنت کی زندگی میں سے نکال دیا، اور پھر اللہ نے کہا کہ اب تم سب کے سب اس جنت سے نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. یعنی ابلیس اور انسانوں کے درمیان یہ کشمکش قیامت تک رہے گی. اور فرمایا کہ تمہارے لیے اس زمین کے اندر رہنے کی جگہ ہے، سامان زندگی ہے، تو تم اب اس میں جا کر آسانی سے رہ سکو گے. یہ میں نے خلاصہ بتایا تھا کہ اس ساری گفتگو میں کچھ رویے ہیں جو زیر بحث ہیں، اور کچھ آزمائشوں کی نوعیت زیر بحث ہے کہ آزمائشیں کس کس طرح کی ہوں گی. ایک آزمائش تکبر کی ہے، انا کی ہے، جس میں ابلیس ناکام ہو گیا تھا سجدے کے حکم کے بعد. دوسری آزمائش شجرہ ممنوع کے کھانے سے ہے، جس کو ایک گروپ نے جنسی معاملات سے جوڑا ہے اور ایک گروپ نے نافرمانی کے ساتھ جوڑا ہے، خدا کی نافرمانی محض ہوئی. تو یہ آزمائش ہو گئی. پھر زمین کے اوپر مستقر رہنے کی جگہ کا امتحان ہوگا، سامان زندگی کا امتحان ہوگا. تو گویا انسانوں کے لیے بیوی اور شوہر کا امتحان ہو گیا، یا عورت اور مرد کا امتحان ہو گیا ایک دوسرے کے حوالے سے، سامان زندگی کا امتحان ہو گیا، انا کا ہماری نفسیات کے کچھ پہلوؤں کا امتحان ہو گیا. اس کے بعد یہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے کچھ نام سیکھ لیے، کچھ کلمات سیکھ لیے اللہ تعالیٰ سے، اور ان کے ذریعے سے انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں. اس کے بعد پھر فرمایا کہ تم سب کے سب، آج جو آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں، کل نہبتو منہا جمیعا، تم سب کے سب اس میں سے نکل جاؤ. دوبارہ حکم کو دہرایا ہے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ جو جنت سے نکالے جانے کا حکم دیا گیا تھا، اس کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ اس غلطی کے موقع پر نکالا جائے گا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اب مقصد یہی تھا کہ اس میں رہنے نہیں دینا ہے. تو اس لیے توبہ کے باوجود، توبہ قبول کرنے کے باوجود، دوبارہ حکم وہی ہوا کہ اس میں سے نکل جاؤ. تو یہ سے اسکیم واضح ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اسکیم یہ تھی کہ جب حضرت آدم یہ شجر چکھ لیں گے، اس کے بعد اس جنت کا دور زمانہ ختم ہو جائے گا اور ان کو نکال دیا جائے گا، اور پھر نئی زندگی کا امتحان شروع ہو جائے گا، جس میں زمین کے اوپر رہنا ہے، زندگی کا سامان اس کے اوپر کر دیا گیا ہے، اور بہرحال رہنے کی جگہ بھی بنا دی گئی. آگے فرمائے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ہم نے ان سے کہا کہ تم سب نکل جاؤ اس میں سے، جمیعاً سب کے سب. میں جمع کے صیغے کی بات کر چکا ہوں کہ ہونا چاہیے تھا اے بیتا، تم دونوں نکل جاؤ، آدم و حوا کو، لیکن یہاں جمع کا صیغہ بولا گیا ہے سب نکل جاؤ. اس سے مراد ابلیس بھی ہے، شیطان بھی ہے، اور آدم و حوا بھی ہیں. اور اس لیے جو پچھلا جملہ ہے وہ اس کا قرینہ ہے کہ یہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. ظاہر ہے کہ آدم و حوا کے بارے میں یہ جملہ بولنا ٹھیک نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. ابلیس اور آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام کے بارے میں تو یہ جملہ درست ہے. تو اس لیے سب کو ہی حکم دیا گیا تھا، یعنی ابلیس بھی نکل گیا تھا اور وہ بھی. اس کے معنی ہے ایک کہ جب تک یہ معاملہ تھا، تب تک جنات خدا کے دربار میں جہاں اس طرح کے حکم ہو رہے تھے، یا غیب کا پردہ اٹھا ہوا تھا، جنات کے لیے بھی اٹھا ہوا تھا غیب کا پردہ، لیکن اس واقعے کے بعد جنات کے لیے بھی غیب کا پردہ حائل کر دیا گیا اور انسانوں کے لیے بھی. اب اللہ تعالیٰ براہ راست معاملہ نہیں کر رہے تھے، بلکہ پس پردہ سب کچھ اب ہوگا. تو اس کا یہ آخری دن تھا، یعنی درخت چکھ لینے کے بعد شیطان کا بھی یعنی ابلیس کا بھی اور آدم و حوا کا بھی یہ آخری دن تھا کہ جب انہوں نے خدا سے براہ راست کوئی مشاہدہ ہوا یا فرشتوں کو براہ راست دیکھا. تو اس لیے یہ سب کو کہہ دیا گیا کہ تم تینوں کے تینوں نکل جاؤ. اگلی بہت بڑی ذمہ داری ہے جو آگے بیان کی جا رہی ہے, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس آئے تو اس کو قبول کر لینا. تو جس نے قبول کر لیا میری ہدایت کو تو اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی حزن نہیں ہوگا. اس آیت کے دو محل ہیں, یعنی دو پہلوؤں سے بات ہوئی ہے. ایک تو یہ کہ دنیا میں جانے سے پہلے یہ بتا دیا گیا کہ اب بھی میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا. جس طرح آدم علیہ السلام کو یہ مسئلہ پیش آیا تو انہوں نے کلمات سیکھے, میں نے سکھائے, اسی طرح سے آئندہ بھی سکھاتا رہوں گا. ایک تو یہ اس پہلو سے یہاں بربحل بات ہے. دوسری یہ کہ ماننے کا تقاضا بھی بیان ہو رہا ہے کہ تم لوگوں نے اس ہدایت کو ماننا ہے, جو بھی آئے گی میری طرف سے اس کا انکار کر کے تم بچ نہیں سکو گے. تیسرا موقع محل یہ ہے کہ پیچھے آیت نمبر 37 میں فتلقہ کے الفاظ بولے گئے, ہم اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں سیکھے آدم میں. اصل اس کے معنی ہے ہاتھوں ہاتھ لینا, قبول کرنا, مان لینا, اصل اس کے معنی یہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ فتلقہ سے پہلے ایک بات اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کی, وہ فتلقہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ آدم نے قبول کر لیے الفاظ, آدم نے سیکھ لیے. اس کا مطلب کہ سکھانے کا عمل اللہ کی طرف سے ہوا تھا, تو آدم کو سکھا دیے گئے, آدم نے سیکھ لیے علیہ السلام. اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں جانے کے بعد اس طرح کی غلطیاں تم سے ہوتی رہیں گی, جس طرح آدم علیہ السلام سے ہو گئی کہ شجرا جو منع کیا گیا تھا اس پیڑ کو چکھ لیا انہوں نے, تم سے ہوتی رہیں گی. ہونے کے لیے پھر کرنا کیا ہے اس کا طریقہ میں تمہیں بتاتا رہوں گا. تو تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے, آدم علیہ السلام والا ہونا چاہیے کہ جیسے ہی قرآن کی ہدایت آئے, جیسے اللہ کی ہدایت آئے تو فوراً تلقہ ہونا چاہیے, فوراً سیکھنے کا عمل کرنا. اچھا جی اللہ کی بات آ گئی ہے تو بسم اللہ میں سیکھ لیتا ہوں, اپنے آپ کو درست کر لوں گا. تو یہ دو تین پہلوؤں سے یہ جملہ بہت اہمیت رکھتا ہے کہ اس پورے پیغام کے بعد کہ آدم نے سیکھ لیا. اب دیکھیے تلقہ جو ہے فرشتوں نے بھی کیا, یہ بہت اہم لفظ ہے جو اللہ نے یہاں بولا ہے. جب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا, انہوں نے جب اعتراض کیا آدم علیہ السلام پر کہ آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو خون ریزی کرے گی, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں, تو انہوں نے فوراً کہا جی ٹھیک ہے ہم واقعی نہیں جانتے. تو اسی طرح جو جملہ ہے فرشتوں کا, دیکھیے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, کہ آپ کی ذات پاک ہے, کوئی غلط فیصلہ آپ نے نہیں کیا, ہمارے پاس علم نہیں تھا, ہاں ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ سکھا دیتے ہیں. تو یہ فرشتوں کا سیکھنے کا وہ عمل ہے جو انہوں نے فوراً کیا ہے, اسی طرح آدم علیہ السلام نے کیا. ابلیس کو اللہ نے سکھایا تو اس نے سیکھنے سے انکار کر دیا. اللہ نے پوچھا کہ کیا تم تکبر سے ایسا کر رہے ہیں, تو اس نے کہا نہیں آپ نے مجھے گمراہ کیا. تو اس کا مطلب ہے وہ کچھ سیکھنے پر تیار نہیں ہوا, اس نے ابا کی تھی اور تکبر کیا تھا. تو جو آدمی سیکھنے والا ہے وہ تکبر نہیں کرے گا, اگر تکبر والا ہے تو سیکھے گا نہیں. اگر آپ بات کر رہے ہوں اور میں تکبر میں مبتلا ہو جاؤں تو میں آپ کی بات صحیح ہونے کے باوجود نہیں مانوں گا. تو اب ایک ہی بات ہے جس کی نفی تین لوگ کر رہے تھے, کرنی چاہیے تھی تین لوگوں کو, فرشتوں کو, آدم علیہ السلام کو اور ابلیس کو, لیکن ابلیس نے تکبر کیا, باقی دو نے تکبر نہیں کیا. آدم علیہ السلام نے بھی فوراً سیکھنے کا عمل شروع کر دیا, فرشتوں نے بھی فوراً اعتراف کیا کہ جی ہم آپ کی بات سمجھتے ہیں, ہمارے پاس علم نہیں تھا, آپ کی بات درست ہے. اب جب یہ آیت آئی ہے تو اب چونکہ میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ مخاطب کون ہے, اہل کتاب, اہل کتاب میں سے بھی یہود مخاطب ہیں, تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں بھی آدم علیہ السلام کی طرح تلقہ والا اسلوب اختیار کرنا ہے. جیسے ہی بات سامنے آئے گی اللہ کی ماننی ہوگی, جیسے ہی بات اللہ کی سامنے آئے پتہ چلے کہ اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے ماننا پڑے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ تم اس سے گریز کرو, گریز کرو گے تو وہ سزا ہوگی جو آگے بیان ہو رہی ہے. تو فرمایا فائمہ یاتی جنہ کو منی ہدن, जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हदायत है, मेरी तरफ से जोर इस पर है। ये मैं पहले भी सूरह अल बकरा के आगाज़ में पांचवी छठी आयत में हमने बात की थी कि उलाई का अला हुदम मिन रब्बहिम, वो अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं। पांच नंबर आयत है, वो अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं। इस्लाम का और गैर इस्लाम का फ़र्क यही है, दीन और भी है। तो हम किस दीन पर हैं? जो अल्लाह की तरफ से आई हुई हदायत है। अब हमें उस हदायत पर कोई तवज्जो नहीं देनी जो अल्लाह की तरफ से नहीं आई हुई। दुनियावी मामलात की बात नहीं कर रहा हूँ, दीन के बारे में, कि बाकी जब मामलात में अल्लाह ने खामोशी इख्तियार की है, लेकिन दीन के मामले में सिर्फ़ और सिर्फ हमने वो बात माननी है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें बताई है, क्योंकि हमारा वास्ता तो रसूल से पड़ता है, अल्लाह ताला की वही तो बराए रास्त नहीं आती। तो जो अल्लाह के रसूल बता दें बस वही दीन होगा। यहाँ भी उसी बात को जोर दिया गया है कि ये जब मेरी तरफ से मिन्नी, मेरी तरफ से तुम्हारे पास हदायत आए तो उसको कबूल कर लेना। इसमें ये जुमला हज़फ़ है कि उसको कबूल कर लेना। फ़ाइन मै आते जन्ना को मिन्नी हुदन, तो अगर मेरी तरफ से हदायत आए तो उसको कबूल कर लेना। तो जिसने कबूल कर लिया, कबूल करने से मुराद क्या है? पैरवी करना। तो जिसने पैरवी की उसकी, तो उसके ऊपर कोई खौफ नहीं होगा और कोई हुज़्न नहीं होगा। जिसने पैरवी की, पैरवी का मतलब होता है कि किसी चीज़ के ऊपर अमल करना, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी तब्दील कर लेना, उसके मुताबिक अपने आमाल करना, उसके मुताबिक अपने ख्यालात को दुरुस्त कर लेना। ख्यालात, आमाल और रवैये उसके मुताबिक दुरुस्त होने चाहिए। किसी चीज़ की पैरवी करने का मतलब कभी वो होता है, कभी वो होता है, कभी तीनों होते हैं। ख्यालात दुरुस्त कर लेना, अमल दुरुस्त कर लेना, रवैये दुरुस्त कर लेना। मसलन तकब्बुर रवैया है, इसको दुरुस्त होना चाहिए, और जो बात हुक्म दिया गया उस पर अमल हो जाना चाहिए, अमल दुरुस्त हो गया। अगर कोई अकीदे की बात दुरुस्त की गई है तो अकीदा दुरुस्त हो जाए। किसी पैरवी करने का मतलब ये है, आपके ख्याल दुरुस्त हो जाए, उसके मुताबिक हो जाए, आपके आमाल उसके मुताबिक हो जाए, और आपके रवैये उसके मुताबिक हो जाए, ये इत्तबा होती है। तो फरमाया कि जिसने तीनों तरह से किसी चीज़ को मान लिया तो उसके ऊपर कोई खौफ नहीं होगा और कोई और ना वो गमज़दा होंगे। खौफ और हुज़्न दोनों समझ लीजिए। खौफ कहते हैं अंदेशे को कि पता नहीं कल क्या मेरे साथ होगा, ये खौफ होता है। खौफ मुस्तकबिल में होने वाले खदशात और नुकसानात का डर होता है, और हुज़्न होता है हाल में या माजी में खोई गई चीज़ों पर गम होता है। गम, हुज़्न का मतलब गम है, तो गम उन चीज़ों पे होता है जो खोई गई हमसे, कभी नुकसान हो गया या कल हुआ था या परसों हुआ था या पिछले साल हुआ था, तो उसके ऊपर हमें गम होता है, ओहो फलां आदमी मारा गया, मेरा भाई फौत हो गया, मेरा बाप फौत हो गया, या मेरा नुकसान हो गया, या मेरी गाड़ी चोरी हो गई, या मेरी, तो ये हुज़्न होता है। तो फरमाया कि जो इस मेरे दिए हुए पैगाम की, मेरी दी हुई हदायत की पैरवी करेगा, तो उसको वो दिन देखना नसीब होंगे कि जिसमें ना कोई माजी का इस तरह का कोई गम होगा, पछतावा होगा, और ना मुस्तकबिल का कोई खौफ होगा। जन्नत की इससे बेहतर ताबीर नहीं हो सकती। ये जुमला उन जुमलों में से है जो हम इलहामी किस्म के जुमले कह सकते हैं, कि किसी चीज़ को आपने हकीकत को बयान करना हो तो मुख्तसर तरीन अल्फाज में बयान कर सकें, यह खुदा का ख़ास तरीका है कि वो बाज़ चीज़ों को एक ऐसे जुमले में बयान कर देते हैं अल्लाह ताला कि पूरी बात का इहाता हो जाता है। ठीक है, अब फ़र्ज़ कर लीजिए एक लम्हे के लिए कि आपके पास खाना नहीं है, थोड़ी देर बाद भूख लगनी है, कहाँ से खाएंगे? ये खौफ के अंदर आ जाएगा। तो किसी नेमत की कोई कमी नहीं होगी। ये खौफ का लफ्ज़ इस बात को बयान कर रहा है कि कोई ज़रूरत की चीज़, कोई ख्वाहिश की चीज़, कोई तमन्ना की चीज़, कोई कमी नहीं होगी, और नुकसान भी कोई नहीं होने वाला होगा। ऐसा नहीं कि जो मेरी ज़िंदगी मिली है वो छिन जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि जो मुझे वहाँ नेमतें मिली होंगी वो छिन जाएंगी, इसका भी खौफ नहीं होगा। तो आप देखिए कि किस तरह से अल्लाह ताला ने एक लफ्ज़ बोलकर पूरी हकीकत को बयान कर दिया। अब दूसरी बात यह है कि हम वहाँ जन्नत में जाएंगे, किसी को छोटी जन्नत मिली होगी, किसी को बड़ी मिली होगी। ठीक है, अब मैं आपको देख के, आप बड़ी जन्नत में गए हैं, गमज़दा रहूँ, बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा नहीं, वहाँ पे हकीकत का इदराक इस तरह से हो जाएगा कि बस हम इस पर पछताएंगे नहीं, हमारे लिए वो जन्नत मगन करने की, खुश कर देने की जगह होगी, कोई माजी का पछतावा नहीं होगा। तो ये अब किनको मिलेगा जो अल्लाह की हदायत को कबूल कर लेंगे। अब इस बात में अहले किताब के लिए भी एक ऐलान है, अहले किताब के लिए ये ऐलान और हमारे लिए भी है, फितरी सी बात है। लेकिन उस वक्त जो ऐलान हुआ वो क्या था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं, मेरी तरफ़ से एक और हदायत सामने आ गई है, मान लोगे तो बच जाओगे वरना मारे जाओगे, ये ऐलान इसके अंदर था। तो तुमने कौन सा रवैया इख्तियार करना है? आदम वाला, फरिश्तों वाला, ना कि इबलीस वाला। तो ये वो पूरी बात थी जो मुख्तसर तौर पर एक दास्तान सुनाकर, और दास्तान भी अल्लाह ताला ने दो वाक़यात इकट्ठे करके सुनाई, एक खिलाफत वाला, एक जन्नत में रख, एक सजदे वाला और दूसरा जन्नत में रखने वाला, तीन वाक़यात इकट्ठे करके तीन रवैये सामने रखे, फरिश्तों का रवैया, आदम अलैहिस्सलाम का रवैया और इबलीस का रवैया। और उसमें जो बात समझाई गई है वो कबूल करने का है, हक़ को कबूल करने का उनसर जो है वो नुमाया है कि सच्चाई जब सामने आ जाए उसको मानना है। और फिर ये बताया कि आदम अलैहिस्सलाम को मैंने ये कहा था, दूसरा ऐलान इसके अंदर अब ये है, आदम अलैहिस्सलाम से मैंने अहद लिया था कि जब भी कोई मेरी हदायत आएगी तो मानोगे। यानी कोई आदमी ये नहीं कह सकता अच्छा जी मैं हज़रत नूह को तो मान लिया है, बाकियों को मानने की क्या ज़रूरत है, कोई ये नहीं कह सकता। ये इस आयत का एक और तकाजा है कि जब भी मेरी हदायत आएगी, जब भी, ये किससे मुआहदा हुआ था? आदम अलैहिस्सलाम से। तो कुछ मुआहदे होते हैं जो हमारे आबा व अजदाद करते हैं, हमारे ऊपर लाजमन आ जाते हैं, मसलन पाकिस्तान किन्होंने बनाया था, अब आप कौन हैं, खुद ब खुद पाकिस्तानी हैं, चाहें ना चाहें, पसंद करें ना करें, ठीक है। तो आदम अलैहिस्सलाम से जो अल्लाह ने अहद बांधा था वो पसंद करें ना करें हम तक पहुंचेगा, ठीक है। और वह अहद क्या है कि जब भी मेरी तरफ से कोई हदायत आएगी, जब भी, वो मानी जाएगी। तो अब देखिए कि कितनी वाज़े तौर पर तमहीद को इस मकाम तक पहुंचा दिया अल्लाह ताला ने कि तुम्हें क्या करना है, कुरान के हवाले से तुम्हारी क्या जिम्मेदारी बनती है। आगे यहाँ तो पॉजिटिव इंजाम बताया कि जो मान लेंगे उनका क्या होगा, वल्लज़ीना कफरू, जो इनकार करेंगे, वकज़्ज़बू बिआयातिना, और हमारी आयतों को जुठला देंगे, उलाइका असहाबुन नार, वो आग वाले होंगे, हम फीहा खालिदून, उसमें वो हमेशा रहेंगे। तो इकरार करने वालों का भी अंजाम बता दिया, इनकार करने वालों का भी अंजाम बता दिया। इनकार करने के लिए दो लफ्ज़ बोले गए, दोनों की बड़ी अहमियत है, उसको समझना चाहिए। कफरू का मतलब है कि किसी बात को समझ जाने के बाद उसका इनकार कर देना, ठीक है। इसके अंदर ना शुक्री का पहलू भी होता है और इनकार कर देने का पहलू भी होता है। और कज़बू का मतलब है कि जुठला देना, ये दूसरा जुर्म होता है। ये किया कि आपने खामोश रहे, ना इनकार किया ना इकरार किया। एक स्टेज ये है कि आपने कहा जी मैं नहीं मानूंगा, ठीक है, ये भी कुफर है। एक स्टेज में आप खामोश रहे, ना इनकार किया ना इकरार किया, ये भी कुफर है। एक ये है कि आपने कहा जी मैं नहीं मानूंगा, आपकी बातें ठीक होंगी लेकिन मैं नहीं मानूंगा, ये सिर्फ कुफर है। आपने एक अगली स्टेज में चले गए, मैं नहीं मानूंगा आपकी बातें भी गलत है। तो यहाँ ये आखिरी दो बातें कही गई हैं जिन्होंने इनकार किया और आयतों को जुठला भी दिया, समझ गए ना। तो ये जुर्म दो इकट्ठे हैं यहाँ पर कि जिन्होंने इनकार किया और तकजीब भी की आयतों की, ये लोग दोजख वाले होंगे और उसमें हमेशा रहेंगे। इन दोनों में फ़र्क क्या पड़ता है? क्योंकि यहाँ अहले किताब की बात हो रही है, तो अहले किताब से अल्लाह का तकाजा ये था, जो आगे चलकर मजीद वाज़े हो जाएगा, कि वो ना सिर्फ ये कि माने बल्कि गवाही भी दें कि ये सच्चे रसूल हैं, ठीक है। इसका उलट क्या होगा कि वो गवाही दें कि ये गलत हैं, सच्चे रसूल नहीं हैं, और इनकार भी कर दें, समझ गए ना। यानी मिसाल के तौर पर हमने एक आदमी ने तकरीर फरमाई यहाँ पर और मैंने कहा जी कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, बात आपकी ठीक है और साथ, लेकिन एक मैंने ये कहा कि मैं आपकी बात भी नहीं मानूंगा और आपकी बात भी गलत है। दूसरे जुमले का पहला मैं अपना इनकार कर रहा था, दूसरे जुमले में आप लोगों से तकाजा कर रहा हूँ कि इनकी बात ना माने। जुटलाने का ये नुकसान होता है। तो इसलिए दो अलग अलग जुर्म हैं, इनकार करना और तकजीब करना, मानने से इनकार कर देना और झूठा भी कह देना, गलत भी कह देना। तो यहूद से तकाजा ये था कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान भी लाएंगे और आपकी तस्दीक भी करेंगे, उसका उलट है, कुफर भी किया और तकजीब भी की। ये हमसे भी मुतालबा होता है और हर एक से होता है। अब इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अहले किताब की पोजीशन क्या है। अरबों के यहाँ इन आयतों की रोशनी में हम ये समझ सकते हैं कि उनका इनकार, उनकी तकजीब बाकी लोगों के लिए रहनुमाई का बायस बनेगी। अगर वो सही रहनुमाई देंगे तो फ़ायदा होगा, गलत रहनुमाई देंगे तो गलत नतीजे निकलेंगे। तो इसलिए अब दो जुर्म हैं इनके जिनको दोज़ख की सज़ा यहाँ सुनाई जा रही है कि अल्लाह की आयतें आ गईं, उनको पता था कि ये अल्लाह की आयतें, तो उन्होंने इनकार भी किया और तकजीब भी की। तकजीब के अंदर दोनों मतलब होते हैं, जुठला देना और गलत करार दे देना। जुठलाने का मतलब होता है किसी का ना ये झूठ बोल रहे हो, ये जुठलाना होता है, और गलत करार देने का मतलब है कि ये अल्लाह की आयतें नहीं। ठीक, और ये इसके अंदर एक और पहलू होता है कज़बू, जो है वो जुठलाने का मफहूम ये होता है कि बात सही हो उसको जुठला देना, बात सही हो उसको जुठला देना। हम भी उर्दू में इसी मानी बोलते हैं, उसने मुझे झूठा कह दिया है, यानी मैं सच्चा था लेकिन उसने मुझे जुठला दिया है, तो उसी वही मफहूम है यहाँ पर भी। जो बात झूठी होती है उसको कज़बू नहीं होता उसके लिए, वही झूठी तो सच्ची बात ही को जुठलाया जाता है। और फिर वे आयात ही ना कहकर और उसको वाजे कर दिया कि हमारी आयतों को जुठला दिया। ठीक, तब देखिए कि दो बातें यहाँ अल्लाह ताला तकाजे के तौर पर सामने रख रहे हैं कि किस्सा आदम और इबलीस से ये बातें वाजे हुई कि या फरिश्तों वाला रवैया इख्तियार किया जाएगा, या आदम अलैहिस्सलाम वाला तरीका इख्तियार किया जाएगा, या इबलीस वाला इख्तियार किया जाएगा। अगर आदम और फरिश्तों वाला तरीका इख्तियार किया जाएगा मेरी हदायत के बारे में, तो उसका अंजाम वला खौफन अलैहिम वला हुम यहज़नून वाली ज़िंदगी होगा, और जो कुफर करेगा और जो खिला देगा उनका अंजाम हमेशा की दोज़ख होगी। तो ये कुफर और तकज़ीब के अंदर जो ताल्लुक है वो आप समझ गए कि ये असल में सादा कुफर जो है वो छोटा गुनाह है, तकज़ीब कर देना दोहरा गुनाह हो जाएगा। और बाज़ औक़ात सिर्फ कुफर कर देना ये भी तकज़ीब के माना हो जाता है, ये भी याद रखना चाहिए कि मसलन किसी कमज़ोर आदमी का इनकार लाजम नहीं है कि तकज़ीब हो। लेकिन एक बहुत बड़ा स्कॉलर है, उसके सामने आपने बात रखी, आपने कहा जी मेरे ख्याल में हक ये है, और कहते नहीं नहीं मैं नहीं मानता इसको, तो तकज़ीब भी हो गई, उसने सिर्फ इनकार किया है। लेकिन चूंकि उसकी हैसियत इतनी है कि वो अथेंटिक है, एक अथॉरिटी है अपने इस मजमून में, उसने कह दी मैं नहीं इसको मानता। तो अथॉरिटी होने की वजह से तकज़ीब हो जाती है। तो अहले किताब चूंकि उलमा माने जाते थे, इनके पास अल्लाह की किताब थी, इनका इनकार दरअसल तकज़ीब भी है। तो उस पहलू से अगर लें तो कफरू के अंदर ये वकज़बू जो है वो ये तौज़ीही मानी में आ जाएगा। ठीक है कि उन्होंने इनकार किया यानी तकज़ीब भी कर दी उन्होंने आयतों में। तो ये दोनों पहलू वाज़ेह रहने चाहिए कि बाज़ लोगों का कुफर सिर्फ कुफर होता है, बाज़ लोगों का कुफर तकज़ीब भी हो जाती है, क्योंकि वो अथॉरिटी होते हैं, उनके इनकार करने का मतलब होता है कि ये बात गलत है, उनके इकरार करने का मतलब होता है कि ये बात ठीक है। ये हैसियत अहले किताब को हासिल थी। तब कुफर की तीन हालतें हैं, आपने खामोशी इख्तियार कर ली, ना इकरार ना इनकार किया ना तकज़ीब की। दूसरी कुफर की हालत यह है कि आपने इनकार कर दिया लेकिन तकज़ीब नहीं की। तीसरी कुफर की हालत यह है कि आपने इनकार भी किया और तकज़ीब भी की। और अहले इल्म या उस मज़मून में अथॉरिटी वाले लोग, उनका कुफर भी तकज़ीब होता है। ये बातें मैंने कुफर और तकज़ीब के पहलू से वाज़े कर दी। तो अब अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि तुम सारे के सारे जन्नत से निकल जाओ तीनों, तो तुम में से हर एक के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि जब भी तुम्हारे पास हदायत आए मेरी तरफ से तो तुम उसको मानोगे, जो मानेगा उसका नतीजा ये निकलेगा, जो कुफर और तकजीब करेंगे उनका नतीजा ये निकलेगा। तो ये बात एक तरह से अहद है आदम अलैहिस्सलाम से, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लिया गया और उनके साथ मामला हुआ। यहाँ चूँकि फ़ैम्मा यातियन्नकुम में कुम जमा है, जैसे कुल नाबितू में जमा है वैसे यहाँ पे कुम जो है वो जमा के लिए है। इसका मतलब है कि इबलीस और उसके ख़ानदान से भी वादा किया गया कि तुम्हारी तरफ भी रसूल आएंगे, जैसा कि कुरान से वाज़े है कि उनके बीच में भी उनके अंदर से रसूल आए और इंसानों के अंदर भी इंसानों के बीच से रसूल आए। यहाँ पर आयत नंबर 39 पे तमहीद ख़त्म हो जाती है मुकम्मल मानी में। तमहीद के दो हिस्से हैं हमने देखे, एक हिस्सा वो था जिसमें कुरान के उस वक्त के मुखातबीन के बारे में अल्लाह ताला ने तीन ग्रोहों का तबसरा किया था, ये जाकर ख़त्म हुआ था आयत नंबर 29 पे जाके ख़त्म हुआ था, और दूसरा हिस्सा किस्सा आदम से शुरू हुआ था और अब ये 39 नंबर आयत पे ख़त्म हुआ है। तमहीद के पहले हिस्से में तारुफ करा के बुनियादी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाने की दावत दी गई, इसमें मिसाल देकर वाज़े किया गया कि तुम लोग जो हो वो किस तरह के रवैया तुमसे मतलूब है और तुम्हारी ज़िम्मेदारी क्या है। इबलीस का मकाम वाज़े रहना चाहिए। इबलीस के मकाम में मैं इस बात को तो नहीं मानता कि इबलीस जो है वो बहुत पारसा था, क्योंकि उसका ज़िक्र कुरान और सुन्नत में नहीं है, लेकिन ये बात वाज़े है कि वो आदम अलैहिस्सलाम से पहले थे, वो आदम अलैहिस्सलाम से पहले का है, वो खुदा की खुदाई को पहले से जानता था, अल्लाह ताला की सारी सिफात को जानता था। उसका इनकार एक और तरह का इनकार है कि एक आदमी ने अभी बचाया है, मसलन हमने नया मुलाजम रखा अलमौरद में, उसको पता ही नहीं है कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, कौन सा कमरा है, किस कमरे में क्या होता है, तो एक पहला आदमी उसको गुमराह कर दे कि ये कमरे इसमें जाके तुम बैठ के सो सकते हो, हालांकि वो बॉस का कमरा हो, ठीक है, तो अब क्या गुनाह किसका है, उसकी वजह से वो भटका है। तो इबलीस भी भटकाने वाला भटकने का सबब बन गया, इसलिए फ़ाज़ल्लाहुमा से उसको बयान किया गया है, हालांकि उसको भटकाना नहीं चाहिए था क्योंकि पहले से खुदा से वाकिफ़ था, पहले से सारी चीज़ों से वाकिफ़ था। तो यही हालत कुरान मजीद के ज़माने में अहले किताब की थी, वो पहले से दीन को जानते थे, उनका काम भटकाना नहीं था बल्कि उनका काम रहनुमा बनना था इस बात की तस्दीक के लिए। इस बात को याद रखिए और अगली आयत देखिए। किस बात को याद रखना है कि अहले किताब पहले से कुरान को दीन को जानते हैं, कुरान को पहचानते भी हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा भी उनसे हुआ हुआ है, इसलिए उनसे तवक्को ये थी कि वो हदायत देने वाले बनेंगे, तकजीब करने वाले नहीं बनेंगे। तो फरमाया या बनी इसराइल, अब जो हम शुरू से बात करते आ रहे हैं कि मुखातब बनी इसराइल हैं, तो बिल्कुल वाज़े कर दिया लफ्ज़ों में, अब बात आ गई है। या बनी इसराइल, ए इसराइल के बच्चों, इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है, हज़रत याकूब, ए याकूब के बेटो, ठीक हो गया जी, ए याकूब के बेटो, उज़्कुरु नेमत अल्लती अनअमतु अलैकुम, ए याकूब के बेटो, मेरी उस नेमत को याद रखो जो मैंने तुम्हारे ऊपर की थी, वऊफ़ू बिअहदी, और मेरे वादे को पूरा करो, ऊफ़ी बिअहदिकुम, मैं अपने वादे को पूरा करूँगा, वइय्याया फ़रहबून, और मुझी से डरो। तब ये पहली बात मुतालबा जो पीछे तमसील में किस्सा आदम में मौजूद था, या आयत वो जो थी या अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा वाली जो थी, नहीं क्या आयत है जी, या नासुबुद वाली आयत में जो हुक्म था वो, शुक्रिया, वो जो हुक्म था वो उसको बुनियादी दावत के तौर पे सामने रखा था। अब बनी इसराइल को, यानी उसमें ऐसा लगता है सारे ही मुखातब अरब जितने भी थे कुरान को सुन रहे थे या कुरान के बाद गैर अरब सारे शामिल, लेकिन अब बिल्कुल नाम लेकर बयान कर दिया कि ए बनी इसराइल, उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम्हारे ऊपर की थी। ये नेमत वो है जिसका जिक्र आगे चलकर आएगा कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को तमाम दुनिया के मुकाबले में अपनी हदायत पहुंचाने के लिए चुना था, इनको इमाम बनाया गया था, रहनुमा बनाया गया था। तो अब बताया जा रहा है कि मैंने तुम्हें रहनुमाई के लिए चुना था। वो किरदार अभी ख़त्म नहीं हुआ, तुमने वो किरदार अदा करना है। तो पीछे मैंने जो बताया कि अल्लाह ताला ने, वो पहले से वाकिफ़ हैं दीन से, उनकी ज़िम्मेदारी क्या है कि नया आने वाले दीन को माने, इकरार करें और लोगों को बताएं कि ये अल्लाह का सच्चा दीन है, हम पर भी ऐसा ही दीन उतरा था, हम इससे वाकिफ़ हैं, पहचानते हैं हम इसको। वो ज़िम्मेदारी सामने रख कर कहा कि ऐ बनी इसराइल, मेरी इस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर की थी। याद रखो, याद करो के बजाय सही तर्जुमा होगा याद रखो, मेरी उस नेमत को याद रखो जो मैंने तुम्हारे ऊपर की थी, यानी तुम्हें इमाम बनाया था, रहनुमा बनाया था, उस रहनुमाई के फरीजे को अदा करो। जो मैंने तुमसे अहद लिया था उस अहद को पूरा करो। वह अहद क्या था कि तौरात और इंजील को कायम करोगे तो मैं तुम्हें नेमतों से नवाजूंगा। ये कुरान में बयान भी हुआ है, आगे जब चलेंगे तो इंशाल्लाह देखेंगे। मैंने तुमसे, तुम पर जो नेमत की थी, तुम्हें इमाम बनाया था इस दुनिया के इंसानों के लिए, वो किरदार आज भी अदा करो। और जो मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम जब मेरी हदायत आएगी उसको पूरा करोगे, उसको मानोगे, तो मैं तुम्हारे ऊपर इनाम करूँगा, वो तुम वादा पूरा करो तो मैं भी अपना वादा पूरा करूँगा। और तुम्हारे अंदर ये जो रुकावट आ गई है, दुनिया से डरने लग गए हो, उसको छोड़ो, मुझी से डरा करो। वजह भी बता दी साथ ही कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों नहीं मान रहे हो, लोगों से डर रहे हो। अब ये जुमला बोलने का महल क्या बना कि तुम्हें जो मैंने वादा लिया था आदम के ज़माने से लेकर हज़रत मूसा के ज़माने तक, उसके मुताबिक तुम्हें अपने अहद को पूरा करना है। मैंने तुम्हें चुना था याकूब अलैहिस्सलाम के बाद, इब्राहिम, याकूब अलैहिस्सलाम से पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से, उस चुनाव के मुताबिक तुमने अपना फ़रीज़ा अंजाम देना है कि इस नेमत को आम करना है, इसको कबूल करने के लिए लोगों को ताउन करना है, समझाना है। तो अब मेरा ये वादा पूरा करोगे तो मैं अपना वादा पूरा करूँगा। और इस वादा को पूरा करने के लिए ताकत कहाँ से हासिल होगी, तकवीयत कहाँ से हासिल होगी, फैया या फरहबुन, मुझी से डरो। ये आगे चलकर अल्लाह ताला ने और भी लफ्ज़ों में बात वाज़े की है कि लोगों से ना डरो, मुझसे डरो। सहाबा के मुतालिक ये बात आई है और यहूद के बारे में भी। हमारे यहाँ ईमान की कमज़ोरी इस वजह से आ जाती है कि हम लोगों से डरने लग जाते हैं। लोगों से डरने के कई वजूहात होते हैं, कुछ लोग सियासी तौर पर ताकतवर होते हैं, दूसरे मज़हब के होते हैं, तब हम डर रहे होते हैं। कभी ये होता है कि मज़हब बिल्कुल बच्चों जैसा लग रहा होता है और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो मुल्हदीन होते हैं, उनकी दानिश के मुकाबले में ऐसा लग रहा होता है कि हम अल्लाह की बात करके छोटे बन रहे हैं, ये डर होता है। बाज़ वक़्त ये होता है कि अगर हम हक बात मान लेंगे तो घर से निकाल दिए जाएंगे, खाना पीना बंद हो जाएगा, कौम कबीला बाहर निकाल देगा। और पुराने ज़माने में जो कौम कबीले के साथ रहने वाले हैं उनका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि क्या मामला होता था। तो फरमाया कि तुम मुझसे डरो, लोगों से ना डरो। तो अपने खुदा के साथ किए हुए वादे को और अपनी जो तुम पर नेमत की थी मैंने, उसको याद रखो, उसके मुताबिक अपना रवैया उस्तवार करो। तो अब बनी इसराइल को नाम लेकर मुखातब कर लिया, उनकी नेमत याद कराई कि तुम्हें हमने इमामत दी थी दुनिया की, उस इमामत का हक अदा करना है तुम्हें, और जो मैंने तुमसे अहद लिया था पीछे हज़रत आदम वाला अहद, और जो हज़रत मूसा इब्राहिम अलैहिस्सलाम सबसे चलता चला रहा है, वो सारे अहद शामिल करके ये कहा कि तुम मेरी हदायत को मानोगे तो मैं अपना वादा पूरा करूँ, अपना फ़रीज़ा अंजाम दोगे तो इन अकाम तौरात वल इंजील वाला अहद भी शामिल है इसके अंदर, वो पूरा करोगे तो मैं भी अपना वादा पूरा करूँगा, यानी मैं तुम्हारा साथ दूँगा। लेकिन इस काम करने के लिए तुम्हें मुझसे डरना होगा। मजीद इस मज़मून को आगे बढ़ाया, व आमिनु बिमा अंजलतु मुसद्दिकन लिमा माकुम, उस चीज़ पर ईमान ले आओ जो मैंने नाजिल की है उसके मिस्ताक के तौर पर जो तुम्हारे पास, सीधा सीधा लफ्ज़ों में ईमान का मुतालबा कर दिया। तो अब गोया बनी इसराइल का इम्तिहान नेमत को का तकाजा पूरा करना है और अहद का तकाजा पूरा करना। तो ईमान ले आओ जो मैंने तुम पर नाजल किया है, उस चीज़ का मिस्ताक, उस चीज़ की तस्दीक जो तुम्हारे पास है। लिमामा कुम से मुराद तौरात है, तौरात उनके पास थी, और अनजल तो से मुराद कुरान मजीद है कि कुरान मजीद पर ईमान ले आओ जो मिस्ताक है, मुसद्दिक है तौरात का। मुसद्दिक के दो मानी हैं, एक मानी होता है कि किसी चीज़ की तस्दीक करना। मिसाल के तौर पर आप कोई बात करें और मैं कहूँ जी कि आपने बिल्कुल सही कहा है, तो मैंने आपकी बात तस्दीक कर दी। एक मानी ये होते हैं कि मैंने कहा कि ये आदमी बड़ा बहादुर है तो आप इनको ले जाएं अपने काम के लिए, और इन्होंने अपने अमल से साबित कर दिया कि हाँ ये बहादुर है, अब इन्होंने अपने अमल से मेरी बात की तस्दीक की। दो में फ़र्क समझ गया ना, एक तस्दीक करना ही होता है कि मैंने लफ्ज़ों में कह दिया हाँ ये ठीक आदमी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक ये कि मैंने इनका एक वस्फ बयान किया कि ये बहादुर आदमी है और उन्होंने बहादुरी दिखा के मेरी बात की तस्दीक कर दी। तो कुरान मजीद बाइबल का दोनों मानी में तस्दीक करने वाला है। कुरान ने यह कहा है बार बार कि वो अल्लाह की किताब थी, अनजलन तौरात, हमने तौरात नाजिल की थी, बार बार कहा है, उस मानी में भी तस्दीक हो गई। लेकिन यहाँ ये मतलब है कि बाइबल में, तौरात में जो आया हुआ है नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जो पेशीन गोइयाँ हैं वो पूरी कर रहा है कुरान मजीद। तो कुरान मजीद की तस्दीक इस तरह से आए, मैं इसको एक मिसाल से समझाया करता हूँ कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि को हमालिया के ऊपर लिखा हुआ है कि मक्का नाम के एक शहर में एक आदमी पैदा होगा, उसका नाम मोहम्मद होगा और वो ऐलान नबूवत करेगा, और इसकी कार्बन डेटिंग पता चली कि 4000 साल पहले की है। 4000 साल पहले हमालिया के पहाड़ के ऊपर एक जुमला लिखा हुआ था कि एक आदमी मक्का में पैदा होगा, उसका नाम मोहम्मद होगा और वो नबूवत का ऐलान करेगा, उसकी ये निशानियाँ होंगी। तो जब मक्का में ये ऐलान हो तो दोनों बातों की तस्दीक हो गई। हमालिया पे लिखा हुआ जुमला कुरान की तस्दीक कर रहा है, और कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का में ऐलान हमालिया पे लिखे हुए जुमले की तस्दीक कर रहा है। ऐसा ही तो हमालिया पे 4000 साल पहले लिखा हुआ जुमला पूरा हो गया, तो तौरात में लिखी हुई बात पूरी हो गई कुरान के नाजल होने पर, और कुरान के नाजल होने पर तौरात में लिखे हुए जुमले की तस्दीक हो गई कि वो दुरुस्त लिखा हुआ था। यहाँ ये इस मानी में कि तुम उस किताब पर ईमान लाओ जिस जो तस्दीक कर रहा है बाइबल में लिखे हुए पेशीन गोइयों की, तस्दीक कर रहा है। तो इतनी हद तक तौरात की भी तस्दीक हो गई और इतनी हद तक नबी सल्लम की भी तस्दीक हो गई। तो मुसद्दिक अल्लिमा माकुम का मतलब ये है कि उस चीज़ का तस्दीक हो रही है जो तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास बाइबल में लिखा हुआ है कि नबी अकरीम सल्लम ने आना है, और तुम्हारे पास इंजील में लिखा हुआ है कि नबी अकरीम सल्लम ने आना, उसकी तस्दीक कर रहे हैं नबी सल्लम। इसको समय लेना चाहिए, ज़रा लंबी बात है, कुछ बातें इंशाल्लाह क्योंकि अब 5-4 मिनट हैं, कुछ बातें अगली दफ़ा अर्ज़ कर दूंगा इसके बारे में कि अगर तौरात और इंजील की पेशीन गोइयाँ इकट्ठी कर लें तो आप छोटी सी सीरत नबी लिख सकते हैं, इतनी वाज पेशीन गोइयाँ कि मसलन आप फरान के इलाके में पैदा होंगे, आप बाइबल सोसाइटी से जाकर बाइबल ख़रीदिए, उस पे आखिर पे नक्शा बना हुआ है, तो सऊदी अरब वाला इलाका जो है उसको दश्ते फारान लिखा हुआ, अंग्रेज़ी में पारान है पी के साथ, क्योंकि पुरानी जो ज़ुबानें थी उसमें पे और फे एक ही आवाज़ होती थी, तो फारान के इलाके में पैदा होंगे। फिर ये लिखा हुआ है कि आपको कौम निकाल देगी, वापस आएंगे तो 10,000 कुदसी होंगे, फतेह मक्का के मौके पर आपके साथियों की तादाद 10,000 है, अजीब व गरीब इत्तेफाक। जब आप आएंगे तो आपके एक हाथ में तलवार होगी या एक हाथ में शरीयत होगी, मक्का में आप इसी असीय से दाखिल हुए थे, हुक्मरान थे, तलवार हाथ में थी और शरीयत थी, कानून देने वाले थे, کہ اب مکہ میں یہ قانون نافذ ہوگا. پھر یہ لکھا ہوا ہے انجیلوں میں آ کر کہ آپ کے ذریعے سے جو حکومت قائم ہوگی وہ 1000 سال تک قائم رہے گی, اور یہ پیشین گوئی ہمارے زمانے میں آ کر پوری ہوئی, اکبر کے زمانے میں. ہمارا زمانہ نہ کہیے, اکبر کے زمانے میں 1000 سال پورے ہوئے. تو جب اکبر کے زمانے میں 1000 سال پورے ہوئے تو اکبر نے دین الہی بنانے کی کوشش کی, اور یہی وہ زمانہ ہے جب مغرب پر تول رہا ہے مسلمانوں کے علاقوں میں دن دنانے کے لیے. عجیب و غریب بات ہے, یہ پیشین گوئیاں تورات میں موجود ہیں. کچھ ایسے جملے ہیں جو کئی معنی رکھتے ہیں, لیکن بہرحال ہمارے بعض محققین نے, مثلا آپ یسا کی پہاڑیوں کے پیچھے چلے جائیں, قوم ان کو دھکیلے گی تو یسا کی پہاڑیوں کے پیچھے چلے جائیں گے اور پھر واپس آئیں گے. تو یسا کی پہاڑیاں سمجھیے مدینہ میں جانے کی بات ہے, جس راستے سے آپ گزر کے گئے ہیں, پہاڑیوں کے اوپر سے گزر کے گئے ہیں, جس غار میں آپ نے پناہ لی وہ پہاڑوں کے بیچ میں تھی. اسی طرح حضرت موسیٰ نے اپنے بعد زمانہ بتایا کہ کتنے زمانے, وہ 1200 کچھ سال بنتے ہیں, وہی زمانہ بنتا ہے. اسی طرح حضرت موسیٰ نے یہ جملہ بولا ہوا ہے کہ تمہارے بھائیوں میں سے ہوگا. اب جو تازہ بائبل چھپ رہی ہیں اس میں یہ جملہ تبدیل کر دیا گیا ہے, کیونکہ ہمارے علماء نے جب کام کیا ہے کہ اس کا مطلب بنی اسماعیل, یہ بنی اسرائیل ہیں اور ان کے بھائی کون ہیں, بنی اسماعیل. تو اب بھائیوں میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسماعیل میں سے ہوں گے. اب وہاں جملہ کہے تمہارے اندر سے ہوگا, جدید ورژن جو ہے وہ اس میں تبدیلی آ گئی ہے. تو اب جیمز ورژن کم از کم اپنے سامنے رکھنا چاہیے, کیونکہ وہ 250 سال پہلے کا ترجمہ ہوا ہوا ہے, تو اس میں آپ دیکھیں کہ جملے تبدیل کر دیے گئے ہیں. تو بھائیوں کی جگہ پہ اب تم ہو گیا ہے, تم میں سے. حالانکہ یہ جملہ بول کر مثلا آپ لوگ ہیں, تو آپ لوگوں کے بھائیوں کو میں نے آپ کی بات کہی تھی, تو آپ کے بھائیوں کو جب کہا جائے گا تو آپ مراد نہیں ہیں, اس کے لیے کہنا ہوگا کہ آپ میں سے کسی کو میں نے کہا تھا. تو آپ کے بھائیوں کو جب بات کی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کے علاوہ کوئی اور لوگ ہیں جو آپ کے بھائی کے درجہ رکھتے ہیں, لیکن وہ آپ نہیں ہیں. تو حضرت موسیٰ نے واضح لفظوں میں کہا تھا کہ تمہارے بھائیوں میں سے ہوگا, یعنی بنی اسماعیل میں سے ہوگا. حضرت ابراہیم کے تین بیٹے ہیں, ایک حضرت اسحاق ہیں, ایک حضرت پہلے بیٹے حضرت اسماعیل ہیں, دوسرے بیٹے اسحاق ہیں, تیسرے بیٹے مدیان ہیں. ٹھیک ہے, مدیان سے مدین, حضرت صالح بھی اس طرح سے اسی خاندان سے ہوں گے. تو اسماعیل علیہ السلام اب بنی اسرائیل کے بھائی کون ہوں گے, یا مدین والے ہوں گے, مدیان کے بیٹے ہوں گے, یا حضرت اسماعیل کے بیٹے ہوں گے, ان میں سے آنا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اب بنی اسرائیل میں سے آئے. تو جس رسول کا یہاں بات کہی جا رہی تھی وہ تھے کہ جو بنی اسماعیل میں سے ہونے تھے یا بنی مدیان میں سے ہونے تھے. تو چونکہ فاران وغیرہ کا ذکر کیا گیا, تو مدیان کا علاقہ بھی فاران کے دشت میں آتا ہے, اور اسماعیل علیہ السلام کا بھی مدیان کے فاران کے علاقے میں آتا ہے. تو اس طرح سے چھوٹی موٹی سیرت لکھی جا سکتی ہے, ان پیشین گوئیوں سے اتنی بات واضح ہے. اور ایک اور بات بہت اہم ہے, حضرت عیسیٰ جب آئے ہیں تو حضرت یحییٰ نے قید خانے میں تھے, وہ جہاں پر ان کی وفات ہوئی, قید خانے کی کھڑکی سے بنی اسرائیل نے پوچھا کہ ایک آنے والا آیا ہے تو ہم کیسے پہچانیں کہ وہ وہی ہے جس نے آنا تھا, یعنی حضرت عیسیٰ ہی ہے وہ. تو انہوں نے کہا کہ جا کر پوچھو ان سے کہ کیا وہ ایلیا ہے, حضرت الیاس ہے, اور یہ پوچھو کہ کیا وہ مسیح ہے, اور یہ پوچھو کہ کیا وہ رسول ہے جس نے آنا ہے, اور کیا وہ مسیح ہے. تو یہ تین سوال حضرت عیسیٰ سے پوچھے گئے, کیا آپ ایلیا ہیں یعنی الیاس ہیں, یا آپ وہ رسول ہیں جن کے آنے کا وعدہ چلا رہا ہے. تو دونوں کے بارے میں انہیں انکار کیا. جب انہوں نے کہا کہ آپ مسیح ہیں تو انہوں نے کہا کہ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے, اس کا اقرار کیا لیکن ڈائریکٹ لفظوں میں نہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو پیشین گوئیاں ہیں وہ اس قدر واضح ہیں. اسی کو اللہ تعالیٰ نے, اس کو اللہ نے لفظوں میں ایک اور طرح سے بیان کیا ہے, یجدونہ مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل, یہ رسول وہ رسول ہیں کہ جن کو وہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنی کتابوں میں, تورات میں بھی اور انجیل میں بھی. تو وہی اسی کو یہاں دو لفظوں میں بیان کیا ہے, مصدق لما معکم, ان چیزوں کی تصدیق کرنے والی کتاب کو مانو گے جو تمہارے پاس باتیں لکھی ہوئی ہیں. वला तकूनु अव्वला काफिरिन बही, और तुम कुफर करने वाले पहल कुफर में पहल करने वाले ना बन जाओ। ये इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम पहले काफिर हो, कुछ लोगों ने तर्जमा इस तरह से कर दिया। कुफर में पहल करने वाला वो आदमी होता है जो रीत कायम करता है, जो रीत कायम करता है उस काम करने के लिए। वही मफहूम यहाँ पर है कि तुम कुफर करने की बुनियाद ना डालो तुम्हारे कहने की वजह से, क्योंकि उनकी हैसियत क्या है, वो गवाह हैं अल्लाह के, उनका वो इमाम बनाए गए थे, तो अगर वो कुफर करेंगे तो फिर वो अव्वला काफिरिन होंगे। तो तुम कुफर की बुनियाद डालने वाले ना बनो, तुम कुफर का पहल करने वाले ना बनो। टाइम हो गया जी, यहाँ पर इसी आयत को दरमियान में रोक लेते हैं, क्योंकि आगे अहम बातें हैं तो मुकम्मल नहीं होंगी। तो हम आयत 41 दोबारा अगली दफ़ा इंशाल्लाह शुरू करेंगे। वाखिर दामान अल्हम्दुलिल्लाह।